اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کتاب قلندر شور کے صفحہ نمبر 12 سے اس کا آغاز کریں گے. لیکن آج آپ نے یہ جو تصویر شیئر کی قلندر شور کتاب کے ٹائٹل کی، میں اس پہ دو تین باتوں پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس میں اوپر قلندر شور لکھا ہوا ہے، نیچے ایک سیڑھی تھی بنی ہوئی ہے، اور ایک کبوتر جو ہے وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھنے کی کاوش کر رہا ہے یا اڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اسے طرف بہت توجہ سے دیکھیں، اسے بہت دھیان سے دیکھیں. یہ کبوتر جو ہے یہ روح انسانی کا استعارہ ہے، یعنی ایک مثال ہے کہ سفید کبوتر جو ہے یہ روح انسانی کا استعارہ ہے، اس کے سامنے سیڑھیاں ہیں. آپ ان سیڑھیوں کو غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو چار دائرے، نیم دائرے نظر آئیں گے. دیکھیں، پہلا کرو یہ نیم دائرہ سیڑھیاں، پھر دوسرا کرو جہاں خواجہ شمس الدین لکھا ہوا ہے وہ خواجہ کے بالکل اوپر ایک کرو ہے، دوسرا قلندر شور کی طرف، یعنی کہ ایک دو تین، اور یہ چوتھا کرو جو ہے یہ جا کے شعور کی رے کے ساتھ ملا، جہاں انتہائی روشن روشنی دکھائی گئی ہے، بالکل وائٹ روشنی. پھر وہاں سے ایک رے نیچے پانی تک آ رہی ہے. غور کریں ذرا، اس پہ توجہ دیں، یہ بہت معنی خیز ٹائٹل ہے، یہ حضور مرشد کریم نے ڈیزائن کرایا. اس تصویر میں انہوں نے کیا ظاہر کرنا چاہا؟ ایک تو یہ کہ یہ پہلا شعور دیکھیں زمین سے شروع ہو رہا ہے، اور زمین اور پانی برابر ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ سیڑھیاں دیکھیں واضح دکھ رہی ہیں، پہلے شعور میں چیزیں ذرا تفصیل سے دکھتی ہیں، پودے بھی تو پھول بھی تو پھلواری بھی، تو یہ کبوتر جو ہے یہ درجہ بدرجہ سیڑھیاں چڑھ کے لترک کا بننا طبقن ان طبقہ، یہ سیڑھی در سیڑھی چڑھتے چڑھتے یہ پہلا شعور جو ہے یہ شعور چہارم کو جب پار کر لیتا ہے تو دیکھیں گے ڈیٹیلز ذرا کم ہونی شروع ہو گئیں، پھر ڈیٹیلز اور کم ہو گئیں، صرف ایک دائرے کا، نیم دائرے کا احساس رہا، اور آپ انتہائی روشن ماحول میں داخل ہو گئے. یہ تصویر آپ نے دیکھا، اور اس روشن ماحول کو قلندر شعور کہا گیا، کیونکہ قلندر کے بعد شعور کا تقریباً آدھے سے زیادہ لفظ اسی روشنی میں ہے. یعنی جب ہمارا شعور جہاں پہ یہ کبوتر ہے، یہاں سے رائز کر کے شعور چہارم سے اٹھ کے، شعور سوئم سے گزر کے، شعور دوئم سے گزر کے، شعور اول تک کی رسائی حاصل کر لیتا ہے تو گویا قلندر شعور بن جاتا ہے. قلندر شعور کی ڈیفینیشن میں یہ بات آپ کو بار بار سننی پڑے گی، آپ برداشت کیجئے. قلندر شعور، قلندر شعور جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ انبیاء کرام کی طرز فکر کا اصطلاحی نام ہے، یعنی ٹیکنیکل نیم آف پروفیٹک اپروچ، ٹیکنیکل نیم آف پروفیٹک اپروچ کیا ہے؟ قلندر شعور. یہ قلندر شعور جو ہے یہ انبیاء کرام کی طرز فکر کا نام ہے. قلندر شعور اللہ رب کریم کی طرز فکر کا نام ہے، چونکہ یہ ابتدائی میں ہمیں یہ باتیں بتانے کی تھیں کہ اس کا ٹائٹل ذرا آپ کی توجہ کا طالب ہے، آپ کو یہ خلاصہ ذہن میں رکھنا ہے جو اس کے ٹائٹل پہ تصویری صورت میں بنایا گیا ہے. कि किस तरह हमारी जात या हमारी रूह जो है वो इन दर्जों से गुजर कर नीचे आई है और किस तरह से ये इन्हीं दर्जों को पार करके वापस शौर्य बल तक जाएगी। लेकिन एक ये कि हमने जाना तो है, लेकिन हमें अगर रियलाइजेशन के साथ जाएंगे, यानी इस मादी जोन में इतनी रियलाइजेशन जनरेट कर लें जो मरने के बाद हासिल होनी है, तो बेहतर हो जाएगा। और अगर कहीं हमने ये किया कि हम इस इंतजार में रहे के बाद में शौर तो खुल ही जाने, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में भेजे जाने का मकसद ये है कि हमें अपने दुनियावी शऊर को बढ़ाना है, उसको इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि शौर्य बल तक चले जाएं। अगर हम इस मादी जोन में रहते हुए इस शौर के इन चारों दर्जों का शऊर हासिल कर लेंगे, तो हम अगले फेज ऑफ लाइफ में, जिंदगी के अगले मराहल में, क्योंकि आगे सब यहीं का रिकॉर्ड चलेगा, अगर हम इस इंतजार में रहे कि ऊपर जाके ठीक हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना अच्छा गुमान होगा, क्योंकि आपको दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि आप यहाँ पे अपने शऊर को इतना डेवलप कर लें कि दोबारा शैतान आपको बहका ना सके, आपको धोखा ना दे सके, आपको चकमा दे के गुस्सा ना दिला सके, आपको चकमा दे के नेगेटिविटी ना करवा सके, क्योंकि नेगेटिविटी से पर्ज होने में वक्त लगता है। तो बात ये सरे वर्ग के हवाले से चंद बातें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, अब उसके बाद हम वापस इस किताब के सफा नंबर 12। इसका मजमून का उन्वान है जिस्म और रूह। अब ये जो टाइटल है इसी पे गौर करें, इसी पे जरा तवज्जो दें। जिस्म और रूह, जी जरा इसको आवाज को बंद कर दें। जिस्म और रूह, हेलो, ये जिस्म और रूह, जरा इस पे रुक जाइए और बहुत तवज्जो से अपने जिस्म को देखें, महसूस करें। ये जिस्म अगर हरकत करता है तो किसी एनर्जी की वजह से कर रहा है। अगर ये जिस्म हरकत में है और इसकी हरकत और सकनात कहां से इनिशिएट हो रही है, इन हरकत और सकनात को जहां से ये जिस्म की हरकतें रिले हो रही हैं, उस एनर्जी को, जो एनर्जी इस जिस्म की हरकतों का सबब है, उसको रूह कहा गया। ये मादी जिस्म, इसके बारे में और रूह के बारे में, यानी इस जिस्म को चलाने वाली एजेंसी या वो एनर्जी, उसके बारे में हजूर मुर्शिद करीम ने ये टाइटल बनाया या ये मजमून लिखा। फरमाते हैं जब हम जिंदगी का तजजिया करते हैं तो हमारे सामने एक ही हकीकत आती है कि आदम का हर बेटा और हव्वा की हर बेटी खुश रहकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। गौर करें, यानी हम जब जिंदगी पे गौर करते हैं तो पहली बात ये सामने आती है कि हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये चाहत सबकी कॉमन है, लेकिन जिंदगी का मादी नजरिया हर हर कदम पे उन्हें मायूस करता है। इसलिए कि हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा फानी और मुतगैर है। अब ये नोट करने की बात है कि हम चाहते हैं जिंदगी खुशी खुशी गुजरे, लेकिन अगर हम मादी नजरिए को अपनाकर खुश रहना चाहते हैं तो वो मायूसी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा, हर सेकंड फानी है और मुतगैर है। फानी का मतलब खत्म हो जाता है, वो सेकंड जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आता, वो फना हो गया। और उस सेकंड में भी तब्दीलियां हो रही हैं, मुतगैर है वो। और दूसरी बड़ी बात फरमा रहे हैं कि मादी एतबार से हमें ये भी इल्म नहीं कि सच्ची खुशी क्या होती है और किस तरह हासिल की जाती है। हकीकी मुसर्रत से वाकिफ होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी असल बुनियाद यानी बेस को तलाश करें। गौर कीजिए, हकीकी मुसर्रत से वाकिफ होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी असल यानी अपनी बुनियाद यानी अपनी बेस को तलाश करें। ये पहले पैराग्राफ में हजरत मुर्शिद करीम ने जिंदगी का तजिया करके एक जुमले में बात खत्म कर दी कि हम खुश रहना चाहते हैं, खुशी में रहना चाहते हैं। अब वो कैसे हासिल होगी? जब तक हमें अपनी असल का नहीं पता होगा, हम उसको तलाश करके उससे वाकिफ नहीं होंगे, हम खुश नहीं हो सकते। हमारी खुशी आरजी फानी और मुतगैर ही रहेगी। अगर हम आरजी फानी और मुतगैर चीजों से रिलेट होके उसमें खुशी ढूंढेंगे तो हमारी खुशी भी वैसी होगी जैसी वो चीजें हैं। Having said that, हजूर फरमाते हैं कि जब हम कुछ नहीं थे, यानी जब आप अपनी असल पे गौर करना शुरू करते हैं तो बात कहां से शुरू होगी कि जब हम इस मादी वजूद में नहीं आए थे तो हम कहीं तो थे ना। जब हम कुछ नहीं थे तो कुछ ना कुछ जरूर थे, इसलिए कि कुछ ना होना हमारे वजूद की नफी करता है। अगर हम बिल्कुल ही नहीं थे तो दुनिया में कहां से आ गए? हम कहीं थे, लिहाजा दुनिया में तशरीफ आवरी हुई। अब हमारी मादी जिंदगी मां के पेट से शुरू होती है और वो मादा जब एक खास प्रोसेस से गुजरकर अपनी इंतहा को पहुंचता है, एक जीती जागती तस्वीर अदम से वजूद में आ जाती है। अब ये लफ्ज तस्वीर खुद अल्लाह रब्बे करीम ने इस्तेमाल किया है, वह कैफा युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो रहमे मादर में कैसे तस्वीर कशी करता है। गौर करें, अपनी इंतहा को ये पहुंचता है जब ये एक प्रोसेस, वो जो प्रोसेस मां के पेट में हो रहा है, उसके रहम में हो रहा है, वो जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तो एक जीती जागती तस्वीर अदम से वजूद में आ जाती है। अब माहौल से उस तस्वीर को ऐसी तरबियत मिलती है कि उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि सच्ची खुशी हासिल करने का तरीका क्या है और किस तरह यह सच्ची खुशी हासिल होती है। आप गौर करके देख लें कि बच्चा खुश होता है, हम उसे देख के खुश होते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है, वो खेलना चाहता है, हम उसे कहते हैं मत करो, मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत। नतीजा ऐसी उसका जहन ब्लॉक कर देते हैं, अगर वो एक सवाल को बार बार पूछे, हम उसको डपट देते हैं कि बाजा। ये है माहौल की वो तरबियत जो उसकी सच्ची खुशी के ऊपर एक पर्दा डाल देती है। उसे ये भी पता नहीं रहता कि ये सच्ची खुशी हासिल कैसे की जा सकती है। अब देखिए क्या फरमाते हैं कि हकीकी मुसर्रत से हम आगोश होने के लिए इंसान को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जिंदगी का दारो मदार सिर्फ जिस्म पर नहीं है, बल्कि उस हकीकत पर है जिस हकीकत ने खुद अपने लिए जिस्म को लिबास बना लिया। यानी पहली बात देखें, कलंदर शौर, ये लोगों के जहनों में तसव्वुर ये है कि रूहानियत बड़ा मुश्किल का रास्ता है, बड़ी तकलीफ का रास्ता है। मुझे बताइए कि यहाँ पे कलंदर शौर की बात शुरू हुई तो दूसरे ही चैप्टर में क्या बात बताई जा रही है कि हकीकी मुसर्रत से आपने कैसे वाकिफ होना है। अप्रोच पूरी की पूरी कलंदर शौर का हामिल बंदा हर हाल में अंदर तक खुश होता है। जब वो अंदर से खुश होता है वो बाहर भी खुश दिखता है। तो बताइए कि रूहानियत खुदा ना खास्ता कोई तकलीफों और दुखों का रास्ता है? तो आंसर इज नो। शर्त क्या है कि हकीकी मुसर्रत से हम आगोश होने के लिए इंसान को सबसे पहले ये जानना चाहिए, यानी जानने से क्या मुराद है, चीज का यकीन होना चाहिए, उसको इसका मुशाहिदा होना चाहिए कि यह जिंदगी का दारो मदार सिर्फ जिस्म पर नहीं है बल्कि एक हकीकत पर है, और वो हकीकत जिसने जिस्म को लिबास बना लिया। यानी ये बॉडी जो है ये एक लिबास की तरह है। पैदाइश के बाद जिंदगी का दूसरा मरहला हमारे सामने ये आता है कि हमारा हर हर लम्हा मरता रहता है, और हर लम्हे की मौत दूसरे लम्हे की पैदाइश का जरिया बन रही है। यानी बच्चा पैदा होने के हर सेकंड उसके ऊपर जो गुजर रहा है, हर मिनट जो गुजर रहा है, हर घंटा जो उस पर गुजर रहा है, वो मर रहा है। जो गुजर गया वो फौत हो गया, खत्म हो गया लम्हा उसका। लेकिन वही लम्हा दूसरे लम्हे की, वही सेकंड दूसरे सेकंड की, वही मिनट दूसरे मिनट की, वही घंटा दूसरे घंटे की, अगले आने वाले घंटे की पैदाइश का जरिया बन रहा है। यही लम्हा कभी बचपन होता है, कभी लड़कपन होता है, कभी जवानी और कभी बुढ़ापे में तब्दील हो जाता है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, यहां पे गौर करें कि लफ्ज लम्हा इस्तेमाल किया है कि यही लम्हा कभी बचपन होता है, कभी लड़कपन, कभी जवानी और कभी बुढ़ापे में तब्दील हो जाता है। यानी ये जिसको आप कहते हैं कि 15 साल हो गए, बच्चा 15 साल का है, फिर ये नौजवानी 18 साल तक, 20 साल तक, फिर जवानी है, फिर ये बुढ़ा, ये सब एक लम्हा ही है। फकीर और कलंदर शौर का हामिल बंदा इसको एक लम्हा ही देखता है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो एक सेकंड में उसको देख रहे हैं, जिस सेकंड में हम उसको देख रहे हैं, वो सेकंड जिसकी तवालत 15 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, तो वो लम्हा शक्लें बदल रहा है। हम इस हकीकत तक रसाई इस तरह हासिल कर सकते हैं कि हम ये जान लें कि जीती जागती ये तस्वीर एक जिस्म नहीं है, बल्कि असल में ये क्या है, ये एक शऊर है। और करें क्या कहा कि ये एक शऊर है। हमारी मजबूरी ये है कि हम इसे बिल्कुल शऊर भी नहीं कह सकते, क्योंकि शऊर सिर्फ हमारी पहचान का एक ऐसा जरिया है जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी हुई है। यानी ये हमारे पास अल्फाज की कमी है और अल्फाज की कमी की वजह से ख्यालात को प्रॉपरली कन्वे करने में दुश्वारी हो रही है। साफ कहा कि हमारी मजबूरी ये है कि हम इसे बिल्कुल शऊर भी नहीं कह सकते क्योंकि आपको शऊर पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। इस चीज का उनको पूरा इदराक है, इसलिए उन्होंने तवज्जो दिला दी कि ये जरा अल्फाज से ऊपर उठ के समझे, क्योंकि शऊर को हम जो इस्तेमाल करते हैं, मेरा शऊर क्या है, ये हमारी पहचान का एक जरिया है, फिर उसी के ऊपर सारी इमारत खड़ी है। हम ये भी जानते हैं कि जिस्म के खत्म होने पर मादी कसाफत और आलूदगी खत्म हो जाती है, गौर करें ऐसा है या नहीं। जब जिस्म खत्म हो गया, यानी जब हम बकौल अवाम के फौत हो गए, तो क्या होता है, मादी कसाफत और आलूदगी भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात भी हमारे सामने है कि जिस्म के खत्म होने के बाद शऊर फना नहीं होता, बल्कि ये शऊर किसी दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाता है। अब ये इब्तदाई गुफ्तगू है, हकीकी खुशी से मुतारिफ होने के लिए बुनियाद को ढूंढ रहे हैं, और बुनियाद में पहली चीज क्या सामने आई, वो शऊर है। और ये शऊर मादी जिस्म को यहीं छोड़कर किसी दूसरे आलम में मुंतकिल होता है। जब हम सो जाते हैं तब भी मुंतकिल हो जाता है, जब हम मरते हैं तब परमानेंटली मुंतकिल हो जाता है, जब कयामत आती है तो उस शऊर के ऊपर रूह के हवास तारी हो जाते हैं, और फिर जब आप रोजे हशर नशर में मुंतकिल होते हैं तो फिर उसके इन्हीं हवासों की उस शऊर के ऊपर रफ्तार और ज्यादा हो जाती है। हजूर मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं कि जितनी आसमानी किताबें हैं, यानी इल्हामी किताबें, उन सब में एक ही बात का बार बार तज़करा किया गया है, वो ये है कि आदमी सिर्फ मादी जिस्म नहीं है बल्कि एक शऊर है। जब हम पैदाइश से मौत तक की जिंदगी का तज़करा करते हैं तो ये जान लेते हैं कि जिस शऊर की बुनियाद माँ के पेट में पड़ी थी, वो शऊर एक तरफ घटता रहता है और दूसरी तरफ बढ़ता रहता है। अब ये शऊर की बुनियाद माँ के पेट में पड़ी थी, माँ की तर्ज फिक्र, बाप की तर्ज फिक्र का मजमुआ उसकी बुनियादें बनी बच्चे की। तो जैसे जैसे ये शऊर एक तरफ घटता रहता है दूसरी तरफ बढ़ता रहता है, यानी अब आप गौर करें, इस बात की वजाहत अर्ज करने की इजाजत दें, बच्चा पैदा हुआ, एक दिन का हुआ, फिर 10 दिन का हुआ, फिर 20 दिन का हुआ, फिर 1 साल का हुआ, ये 1 साल में उसका वो शऊर जो माँ के पेट में था वो कम होता जा रहा है और मादी शऊर बढ़ता जा रहा है। जब वो 2 साल का हुआ तो वो मादी शऊर और बढ़ गया, और जो माँ के पेट में, यानी जो असली शऊर है, जो उसका नेचर है, वो पीछे कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे शऊर बढ़ता है आदमी मुस्तकबिल में कदम रखता है, और जैसे जैसे शऊर घटता है ये माजी में जाता रहता है। यानी शऊर का घटना माजी है और शऊर का बढ़ना मुस्तकबिल हुआ। शऊर का घटना और बढ़ना उम्र का तायुन करता है, ये है उम्र। उम्र का लघवी मतलब याद रखें, समझ लें, किसी जगह बसना, किसी जगह रहना, इसी से लफ्ज उम्र से इमारत भी है और तामीर भी है। जब आप इसे तामीर और इमारत के साथ जोड़ के देखेंगे तो इन दोनों में डेवलपमेंट भी है और कहीं रिजाइड करना भी आता है, इसको हम उम्र कहते हैं। हमारे जहनों में उम्र का तसव्वुर पैसेज ऑफ टाइम है। इन तसव्वुरात को भी किस सलीके से हजरत मुर्शिद करीम ने वाजे किया है। शऊर का घटना, एक तरफ वो जो लाशऊर से दूरी है ये शऊर घट रहा है, और जो इधर आपका शऊर मादी जोन में बढ़ रहा है इससे उम्र का तायुन होता है। और शऊर के एक जमाने को हम बचपन कहते हैं, शऊर के दूसरे जमाने को जवानी, और फिर तीसरे जमाने को बुढ़ापा। बिलाखिर जो शऊर इस मादी जिंदगी को कायम रखे हुए है और जिस शऊर पर ये जिस्म इर्तकाई मनाजल तय कर रहा है वो कायम रहता है। इसकी मिसाल देख ले कि हर आदमी के अंदर वो छोटा सा बच्चा 4 साल का 5 साल का मौजूद है, वो जब भी चाहता है अपने बचपन की बातें याद कर लेता है। क्या मतलब हुआ कि ये शऊर जिसने इस मादी जिंदगी को कायम रखा हुआ है वो खुद कायम रहता है, अगरचे उसमें कितना ही तगैयर और कितना ही तबदल आ जाए। तो ये आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है। कोई सवाल अगर आपने पूछना हो तो आप जरूर पूछें। ये मैंने 2 पेज 12 और 13 ये पढ़ दिए क्योंकि आगे अगला चैप्टर है जात का मुतालिया, अगर वो शुरू किया तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में उसकी रीडिंग कर लेंगे।
ठीक हो गया सर?
ठीक हो गया,
ठीक हो गया,
बहुत शुक्रिया। एनी क्वेश्चन?
अल्लाह आप सबको सुन। वेटिंग में
बिल्कुल कह सकते हैं। देखें कैफियत है, उस कैफियत को फील अंदर करते हैं, आप स्क्रीन को भी देखते हैं तो अपने अंदर फील करते हैं। अब वो स्क्रीन बाहर है लेकिन उसके तासरात आपके अंदर हैं। हमने इसको अपने इनर में देखना सीखना। जन्नत एक कैफियत का नाम है। देखें ना, हजूर मुर्शिद करीम ने बच्चे की मिसाल दी। हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो गमों से, तकलीफों से, दुखों से आशना होता है?
नहीं,
बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जन्नत इसी को कहा गया है। इस कैफियत से जब आप बाहर आ जाता है आपका शऊर और आपके अम्मा अब्बा आपको कहते हैं जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो वो सब कुछ गलत हो जाता है। ठीक हो गया?
सही।
थैंक यू।
मैं आपको एक बात अर्ज कर देता हूँ। हजूर मुर्शिद करीम ने एक दफा फरमाया,
हर लम्हे की मौत दूसरे लम्हे की बर्दाश्त।
जी जी, क्या? हर लम्हे की मौत दूसरे लम्हे की पैदाइश का जरिया बन रही है। जी वहाँ तो ये तरतीब है ही नहीं। लाशऊर यानी के वहाँ पे ला लग गया ना, जो कुछ यहाँ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि आपके शऊर में वो बातें बैठ जाएं कि भी तरतीब से आप देखे ना। ये मैंने आपको टाइटल की वजाहत क्यों की कि शुरू में ये सारी सीढ़ियाँ आपके जहन में क्लियर हो जाएं। आपको ये सारी स्टेजेस, सारे स्टेप्स, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, ये क्यों सीढ़ियों का क्यों कॉन्सेप्ट बनाया? और वो भी फिर झूमती झामती चल रही है, कोई दाएं पहले एक बैंड इधर को, फिर दूसरा इधर को, तीसरा, वो 4 बैंड दे दिए उसमें।
सही, बिल्कुल सही फरमाया।
ये इकबाल साहब कुछ कह रहे थे क्या, वो एक लम्हे की मौत दूसरे लम्हे की पैदाइश, ये बात नहीं समझ आई?
नहीं सर, मैंने
अच्छा
जी सर, हाँ जी, मैंने गुजारिश की थी कि ये सिर्फ मादी जिस्म पे ही होता है मरना और जीना, और कि इसका असर कोई रूप है या शोर पे भी पड़ता है।
मैं सच्ची बात है, आपका सवाल इस तरह, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, जमान और मकान का जो तसव्वुर है ना, उसके चार दायरे हैं। एक अल्लाह के जहन में टाइम है, एक कायनाती निजाम के लिए वक्त है, फिर उससे नीचे नौ का वक्त है, उससे नीचे इनफरादी वक्त है जिसे हीन कहा है, फिर आगे इसके इस्तेमाल की तीन तर्जे हैं, सीरियल टाइम, नॉन सीरियल टाइम और रियल टाइम। तो ये बातें इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, मैंने खलासा अर्ज कर दिया। तो इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि चूंकि आप हीन में, यानी कि इस मादी जिस्म में हीन काम कर रहे हैं, तो इसमें ये जो तरतीब है लम्हात की, सीरियल टाइम, इस वक्त तो हम उसी से आशना हैं। अभी तो हमें इस सीरियल टाइम से, नॉन सीरियल टाइम और फिर रियल टाइम से आशना होकर, फिर उसके बाद नोई जोन में वक्त को देखना है, और फिर उससे ऊपर कायनाती जोन में, फिर उससे ऊपर खालिक कायनात के जहन के मुताबिक ये जो टाइम की मिकदारें हैं ये सारी की सारी। लेकिन इस वक्त चूंकि हम लम्हों की बात कर रहे हैं, तो ये मादी शऊर की बात हो रही है ना?
जी सर।
तो ये दर्जा बंदियां जो जो आपके जहन में वाजे होंगी, इंशाल्लाह ये सारी बात, सारा चैप्टर समझ आ जाएगा कि एक लम्हा दूसरा लम्हा, ये मादी जोन में हीन का चैप्टर है। ठीक हो गया सर?
जी सर, बहुत शुक्रिया।
अल्लाह खुश रखे जी, बहुत नवाजिश, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज।